قال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. वो कहते थे कि जब जो काफिर होते थे ना नहीं मान रहे थे, तो वो कह रहे थे कि लो भला जब हम मट्टी हो जाएंगे और हमारे बाप दादा की तो बिल्कुल ही हड्डियां घुल गई हैं, तो क्या फिर हम निकाले जाएंगे? जो ये भुरभुरी हड्डियां जो मिट्टी में मिल गई हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि इसको कोई उठा के खड़ा कर दे? तो आज साइंस ने तो ये बात प्रूव कर दी है कि इंसान का डीएनए कभी नहीं मरता। डीएनए जो है ना, चाहे वो मिट्टी में रुल जाए, चाहे वो पानी में बह जाए, चाहे उसके ऊपर कितनी सदियां गुजर जाए, लेकिन ए वंस वो पैदा हो जाए तो उसके बाद वो खत्म नहीं हो सकता। रुल जाएगा यहाँ पे कहीं, लेकिन खत्म नहीं होगा। तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, फिर उसी से उठा के दोबारा खड़ा कर दे। लेकिन इनको इस चीज की समझ नहीं आती है, क्योंकि इनका सोर्स ही गलत है। इनका सोर्स सिर्फ अपनी अकल के घोड़े हैं, वो तो अपनी अकल इस्तेमाल करते रहे। इनका इनको ये बात नहीं समझनी। वलकद वाइदना हाजा नहनु वा बाउना मिन कब, और अलबत्त है कि वादे किए गए इस बात के हमसे भी और हमारे बाप दादा से भी, इससे पहले पिछले भी हमारे बाप दादा को भी यही कहा जाता रहता था कि हाँ एक कियामत आएगी और ये आएगी, तो हमें भी यही कहा जाता कहा जा रहा है, यही धमकियां मिल रही हैं, यही खबरें मिल रही हैं। हादा इल्ला असातीरुल अवलीन, हमें तो लगता है ये ऐसी कहानियां ही हैं, ये ऐसे किस्से ही हैं। अल्लाह ताला माफ कर फरमाए कि आज आज भी ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं। कहते हैं कौन उठ के आया दोबारा, किसने आके बताया? हंसते हैं अगर उनको कहा जाए ना कयामत का, तो वो हंसते हैं कि ये वाकई लो ऐसा भला होगा। हाँ ये बातें तो सुनते ही रहे हैं हम, पहले भी हमारे यही बातें उनको भी कही गई थी, अगर आज तक किसी को आते हुए तो ना देखा। कुल सीरू फिल अर्दी फंजुरू कैफ काना आकिबतुल मुजरिमीन। तो इस बात का जवाब अल्लाह ताला ने ये दिया है कि अच्छा तुम कहते हो ये पिछलों की कहानियां हैं और हमारे बाप दादा को भी यही कहा जाता रहा है और वो भी मट्टी हो गए और कोई आज तक नहीं आया। ऐसा करो तुम जमीन में घूम फिर के देखो क्या हुआ अंजाम मुजरिमों का, यानी क्या इससे पता चलता है कि जो पिछली बस्तियां गुजरी हैं ना तबाह हुई हैं, जरा उनका अंजाम देखो। उनको रसूलों ने आके जो बात बताई थी अजाब की, वो सच हो गई ना? आपने पढ़ा है ना कौमे आद, समूद, कौमे लूत, कौमे शुएब, जैसे पैगम्बरों ने कहा था उनके कहने के मुताबिक अजाब आ गया ना, कौमे तबाह हो गई। तो ये तो दुनिया का अंजाम था। जब रसूल की ये बात सच्ची हो गई तो मौत के बाद के बारे में भी जो कुछ रसूलों ने बताया वो भी सच हो जाएगा। अगर तुम यकीन करना चाहते हो तो मुजरिमों का अंजाम देख लो, अगर दुनिया में वो अपने अंजाम को पहुंच गए हैं तो आखिरत में भी पहुंचेंगे। तुमने इनकी उजड़ी हुई बस्तियां देखी नहीं है, इनकी वीरानी इमारतें देखी नहीं है, तुम देखते नहीं हो उनके साथ क्या हुआ? देखो कैसे बर्बाद पड़े हुए, उनकी हड्डियां दफनाने वाला भी कोई नहीं है, उनको तो कब्रें भी नसीब नहीं हुई थी, कफन भी नहीं मिले थे। तुमने देखा नहीं अल्लाह ने उनको कैसे पकड़ा? तुमने देखे नहीं उनके घर, उनके बड़े बड़े महल्लात, उनकी बड़ी बड़ी इमारतें, उनके बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, उनकी यादगारें? बड़े मजे में रहते थे वो, बड़ी मस्ती में थे, लेकिन सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। वो कभी थे, कभी हुआ करते थे, लेकिन जब वो गए तो उन पर कोई रोने वाला भी नहीं था, ना कोई जमीन रोई ना आसमान रोया। देखा नहीं है कैसे कौमे आद को हवाओं ने उठा उठा के पटक दिया? देखा नहीं कैसे कौमे समूद के कलेजे कैसे फट गए? देखा नहीं कौमे शुएब के साथ क्या हुआ? तो जब उनके साथ ये दुनिया में जो खबरें उनको रसूलों ने दी थी वो सच हो गई, तो फिर कयामत की भी जो खबर रसूल ने दी है वो भी सच होगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया चल फिर के देखो जरा जमीन में। हम और सैरें तो बहुत करते हैं, मगर ऐसी सैरें कम ही करते हैं जिसमें हमें कोई इबरत की चीज मिले, जिसमें हमें कोई ऐसी चीज पता चले कि जिससे हमें ये मालूम हो कि देखो इनका अंजाम क्या हुआ, जरा देखो इनको। अब इससे आपको भी पता चलता है कि ऐसी चीजों को, मुजरिमों को अंजाम को देख के इससे इबरत हासिल करना, इसका हुक्म कुरान देता है। आप लोगों ने एक दफा पूछा था ना कि क्या इस तरह को देखना इनको जायज है, तो इस निगाहे इबरत के लिए देखना बिल्कुल जायज। वो यहाँ पे अब ये सैर का मतलब नहीं कि आप पिकनिक मनाने चले जाएं और वहां पे अपने खाने खोल के बैठ जाएं कि यहाँ पे बड़ा चलो हम ऐसी जगह पे आए हैं कि यहाँ पे एक सैर और तफरी फन की जगह, नहीं, बल्कि इनका अंजाम देख के इबरत लेने के लिए। वला तहजन अलैहिम वला तकुन फी दयकिम मिम्मा यमकुरून, और ए नबी आप इन पे गम ना करें, ऐसे लोगों पे आप ना गम करें। क्योंकि ये लोग जब इस तरह की बातें करते थे तो इंसान को गम तो होता है ना, और नहीं किसने उठना है, ये तो ऐसी कहानी है, बस करो, अगर ये इतना ही है ना तो ले आओ हमारे पास, या कुलो ना मता हाजल वादू इन कुन तुम सादिकीन, वो कहते थे कब होगा ये वादा अगर हो तुम सच्चे, ऐसी ऐसी बातें करते थे। इस चीज को फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इस चीज के ऊपर गम ना करें, क्योंकि आपसे अल्लाह सल्लम जो तमाम इंसानों के साथ इतनी शफकत और मेहरबानी का जज्बा रखते थे ना, तो आपको ये था कि सबको अल्लाह का पैगाम सुना के जहन्नुम से बचा लिया जाए। तो जो लोग ये पैगाम नहीं कबूल करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सदमा होता था, इतने गमगीन होते थे जैसे किसी को अपनी औलाद के आग में जाने के ऊपर गम हो। इसीलिए कुरान पाक में कितनी जगह हमने देखा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई, तो यहाँ पे भी यही तसल्ली का मजमून है कि आपका काम तो पैगाम पहुंचा देना है, वो आप पूरा कर चुके हैं। जिन लोगों ने इसको कबूल नहीं किया तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है जिस पे आप गम करें, बल्कि क्या है ये तो आपको इसमें तंगी नहीं होनी चाहिए, और ना ही आप इससे जो ये चालें चल रहे हैं इससे आपको तंग हो, क्योंकि इनकी आपके खिलाफ कोई चाल नहीं चल सकती। देखिए अगर आप भी किसी को समझा दे अच्छी तरह फिर वो ना समझे तो फिर इस पे दिल तंग ना करें कि उन्होंने तो मेरी बात नहीं मानी, और ना ही आप इस चीज के ऊपर डरें कि अब पता नहीं ये मेरे खिलाफ क्या करेंगी, क्योंकि मैंने तो इसको कहा है और फिर इसने नहीं मानी तो पता नहीं मेरे खिलाफ क्या चाल चलेगी, इससे डरने की जरूरत नहीं है। और वो उल्टा तंजिया तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे ना, अच्छा बताओ कब आ रही फिर क्यामत, रोज रोज क्यामत की बातें करते रहते ना, जरा बताओ तो सही उसकी डेट तो बताओ। कुल असा यकून रदिफ फलकुम बादुल्लजी तस्ताजिलून, कह दीजिए कि हो सकता है के पीछे ही लगाओ तुम्हारे बाज वो जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो सकता है वो करीब ही आ गई हो, तुम्हें पता नहीं है ये कयामत का तुम पूछते हो ना तो वो दूर नहीं है, हो सकता है वो करीब ही हो, आने ही वाली हो, और इशारा मौत की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि इंसान की मौत जो है ना उस वक़्त ही उसकी कयामत शुरू हो जाएगी, मरने वाले की तो कयामत शुरू हो गई ना, अब थोड़ी वो उठ के कभी आएगा, उसके लिए तो कयामत ही है। तो जिसको तुम मांग रहे हो ना, जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो, जिसकी तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी हुई है, तुम्हें क्या पता शायद वो तुम्हारे करीब ही खड़ी हो, ऐसे ही है जैसे कोई बात कर रहा है और उसका दुश्मन उसके पीछे तलवार लेके खड़ा हुआ हो, तुम बार बार पूछते जा रहे हो ना कब आएगी कब आएगी कब आएगी, तुम्हें क्या पता शायद वो आ ही गई हो। और इन्ना रब्बक लज़ू फ़ज़लिन अलन नासी वलकिन अक्सरहुम ला यशकुरून, बेशक तेरा रब बड़ा फजल वाला है लोगों पर। ये क्यों कहा गया? इसलिए कि इतना सुनाने के बावजूद लोग जब नहीं मानते तो ये अल्लाह का फजल ही है कि वो ताकत होने के बावजूद, उनको पकड़ने की कुदरत होने के बावजूद उनकी इन फजूल बातों को बर्दाश्त करता है, उनको पकड़ता नहीं है, ये अल्लाह का फजल है। देखिए जब लोग इस तरह के मजाक उड़ाए, अच्छा ले आओ ना ले आओ, हमें कोई कहे ना, हमें कोई बच्चा कहे अच्छा मार के दिखाए, आप कहती है ना ये करके दिखाए ना जरा, तो आप कहती हैं अच्छा अभी मैं करके फिर दिखाती हूँ, इंसान गुस्से में आ जाता है ना। लेकिन अल्लाह ताला का देखें कितना हिल्म है, कितनी बर्दाश्त है कि वो लोग कह रहे हैं अच्छा लेकर आओ ना, हंसते हैं इस बात पे, तंज करते हैं, आ सुनते ही आ रहे हैं हम ये बातें, तो इतना ही होता ना तो अब तक आ चुकी होती कयामत, हमारे तो बाप दादा से हम ये सुनते आ रहे हैं बातें, और भला वो मट्टी से उठेंगे, इस मट्टी से अब इनको कौन निकाल सकता है जब ऐसी बातें करते हैं। तो अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी बर्दाश्त है, ये उसका बड़ा फजल है लोगों पे कि वो उनको पकड़ता नहीं है। वलाकिन अक्सरहुम ला यशकुरून, लेकिन लोगों की अकल देखो, अल्लाह ताला का इतना सब्र है, लेकिन लोग शुक्र नहीं अदा करते कि शुक्र है अल्लाह तूने हमें मोहलत दी हुई है, तूने हमें पकड़ा नहीं है, हमें संभलने का मौका दिया, हमारी इन फजूल बातों को जो तूने बर्दाश्त किया। तो शुक्र तो बाकी भी सब नेमतों पे करना चाहिए, लेकिन इस पे भी शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने फौरी नहीं पकड़ लिया। फौरी फौरी लोग जब ये बात करते हैं तो अल्लाह ने उनको पकड़ नहीं लिया, अक्सर शुक्र नहीं अदा करते। इस चीज को कोई समझते ही नहीं है कि ये भी अल्लाह का फजल है। आप खुद सोचें कि जब हम कुरान की तरफ नहीं आए थे, जो हमारे तौर तरीके थे, जो हमारी जिंदगी गुजर रही थी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, लेकिन क्या अल्लाह का फजल नहीं था कि उसने हमें मोहलत दिए रखी? अगर अल्लाह उसी वक्त में हमें उठा लेता दुनिया से, हमें मौत आ जाती है, हमारी अमल की मोहलत ख़त्म हो जाती है, तो बताएं हम किस मुंह से अल्लाह के सामने जाते? अभी भी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सोचो उस जिंदगी के ऊपर जो अल्लाह की नाफरमानियों में दिन रात गुजर रही थी, तो क्या शुक्र नहीं अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने, शुक्र है तेरा कि तूने मुझे मोहलत दे दी थी, इतनी जिंदगी दे दी कि मुझे संभलने का मौका मिल गया, इतनी जिंदगी दे दी कि मैं इस तरफ आ गई। अगर ये मोहलत ना मिलती और तू मुझे उठा लेता, तो मैं किस मुंह से तेरे सामने खड़ी होती? وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ, और बे शक तेरा रब अलबत्ता जानता है जो छुपाते हैं इनके सीने और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। अल्लाह ताला को मालूम है, ये जो ये ऊपर ऊपर की बातें जो ये मुंह से बोलते भी हैं वो भी उसको पता है, और जो इन्होंने दिल में छुपाई भी है ना वो भी बातें जानता है। रात का अंधेरा हो या दिल का उजाला, आहिस्ता बोलो या जोर से बोलो, सब रब की नजर में है, कोई छुप नहीं सकता। पर्दे गिरा दो, बत्तियां बुझा दो, कुंडियां लगा दो, लॉक कर दो बाहर से भी, कमरे भी लॉक कर लो। लोगों को धोखा दे सकते हो, मगर उसको कैसे धोखा दोगे जिसकी आंख में कोई नींद नहीं है, जिसको ऊंग नहीं आती, जिसको कोई जोफ नहीं है, जो गाफिल नहीं है, जो अर्श पे बैठा हुआ सारी नकलो हरकत देख रहा है इंसान की, उसको कैसे धोखा दोगे? फिर हम लोगों से तो शर्माते हैं, उस रब से नहीं शर्माते हैं। हमारे सीने में जो छुपा हुआ है ना, जो दिल के अंदर ख्यालात आते हैं, उसको लोगों से छुपाते हैं, किसी को पता ना चल जाए कि मैंने ये सोचा है, मगर उस रब से हया नहीं करते हैं। वो जानता है जो अंदर है और जानता है जो तुम जाहिर करते हो लोगों के सामने, वो ये भी उसको पता है कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, उसको ये भी पता है कि तुम क्या छुपा रहे हो। वमा मिन गाइबतिन, और नहीं कोई गायब होने वाला, फिस्समाई वल अर्द इल्ला फी किताब मुबीन, लोगों ने क्या समझा हुआ है, कोई भी चीज आसमान और जमीन में, कोई भी हर चीज किताब मुबीन में लिखी हुई है, एक रोशन किताब में, लोहे महफूज में। आसमान और ज़मीन की कोई छुपी भी चीज़ जो है ना, वो लोहे महफूज से छुपी भी नहीं है, उसमें ज़रूर लिखी हुई है, उसमें उसका रिकॉर्ड मौजूद है। तुम्हारे लिए छुपी भी हो सकती है, तुम्हारे लिए हो सकता है कि तुम्हें नहीं पता हो, लेकिन आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ों का, जो गैब की भी हैं, जो तुम्हारे लिए छुपी हुई हैं, वो लोहे महफूज में है। जर्रे जर्रे की एंट्री उसमें हुई भी है, जैसे डेटा एंट्री करते हैं ना, ये कंपनी वाले भी अपने सारे एम्प्लॉयज की रखते हैं, अल्लाह ताला की उस लोहे महफूज में हर एक जर्रे की भी एंट्री है, जानदार हो बेजान हो, हर चीज की। तो अजाब का वक्त भी उस किताब में मौजूद है। इससे को पिछली आयतों के कॉन्टेक्स्ट के साथ मिला के देखे ना, तो क्या पता चलता है कि तुमको कहते हो ना कि कब आएगा ये आएगा वो, ऐसी बातें करते हो, सारा सारी चीज उसमें मौजूद है, अल्लाह के पास लिखी भी है, वो वक्त भी मुकर्रर है। क्योंकि जब उनको समझाया जाता ना, तो बजाय मानने के कहते, अच्छा बताओ फिर कब आएगी, कब आएगी? तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि बजाय इसके कि इस वक्त से ये फायदा उठा के अपनी इसलाह कर लें, उल्टा नाशुक्री कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी सारी हरकतों को जानता है, और इनके जो सीनों के अंदर बोग्ज है ना उनको भी जानता है, और जो ये चालें चल रहे हैं उनको भी जानता है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात है, लेकिन अमूमी तौर पे भी हर चीज़ की इन्वेंट्री मौजूद है अल्लाह ताला के पास, हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है। आप ये देख ले, जैसे मैंने आपको बताया ना कि गैब की कुंजियाँ अल्लाह के पास है। तो एक जगह पे इब्ने अब्बास से मरवी है कि अल्लाह ताला ने नून यानी दवात को पैदा किया और तख्तियाँ बनाई और उसमें दुनिया के तमाम होने वाले उमूर लिखे, जो भी होने वाले हैं, कुल मखलूक की रोजियां, हलाल हराम, नेकी बदी, सब कुछ लिख दिया। और ये भी एक हदीस में आता है कि जमीन और आसमान को बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने कलम को बनाया था और उसको कहा था लिख, जो भी कुछ होने वाला है सब लिख। तो उसने सब लिख दिया, ये सब लोहे महफूज में है। इसीलिए अल्लाह ताला को हर चीज का चूंकि इल्म है, तो उसने उसी इल्म की बिना पर कलम को हुक्म दिया कि वो लिखे, और उसने अल्लाह के इल्म के मुताबिक लिख दिया। तो असल बात यह है, फिर इंसान ये सोचता है ना जहन में, फिर शायद आता होगा कि अगर अल्लाह को सब चीज़ों का पता है फिर वो पकड़ता क्यों नहीं है। तो ये बात नहीं है कि उसको पता नहीं है इसलिए नहीं पकड़ता, असल बात ये है, ये नहीं है कि वो गाफिल है, असल बात ये उसने ढील दी हुई है। इन हादल कुरआन यकुस्सु अला बनी इसराइल अक्सर अल्लज़ी हुम फीही यख्तलिफून। और ये जब इंसान सोचता है कि ये अजाब आएगा और कैसे आएगा और ये कैसे हो सकता है, अब अल्लाह ताला ने तो बता दिया ना, साबित किया कि क्यामत आएगी और मुर्दे दोबारा जिंदा होंगे, लेकिन लोग नहीं मानते इसको। तो अल्लाह ताला ने बता दिया है कि ये अंबिया से भी साबित है, पिछली कौमों के अंजाम से भी साबित है, और आसमानी किताबें भी इसका सबूत दे रही हैं। लेकिन किसी चीज़ की खबर का, किसी खबर का सही होना कहाँ से साबित होता है कि जो उसको बताने वाला है वो सच्चा हो। तो इस आयत में क्या बताया गया कि इसका बताने वाला कुरान है और कुरान सच्ची किताब है। वो कैसे पता चलता है सच्ची किताब है कि इवन यहाँ तक कि उलमाए जो बनी इसराइल हैं, बनी इसराइल के जो आलिम हैं, उनमें जो मसले मसाइल होते हैं, उनके दरमियान जो कॉन्ट्रोडिक्शंस होती हैं, उनका भी हल इस कुरान में है, उनके जो इख्तलाफात हैं उनका भी हल ये कुरान बताता है, उनके दरमियान भी इस कुरान ने फैसला किया है। कैसे फैसला किया? मसला ना कि ईसाई कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, और यहूदी उनको वलदु ज़िना कहते थे नऊज़ु बिल्लाह। तो कुरान ने ये फैसला किया कि ना तो वो अल्लाह के बेटे हैं और ना ही वो ऐसे हराम औलाद हैं, बल्कि वो अल्लाह के एक बंदे हैं और ये अल्लाह का एक मोजज़ा है। तो ये कुरान ने मसला हल किया ना। तो वह इन्नहु लहुदा व रहमतुल लिल मोमिनीन, और बेशक वो क्या? कुरान, कुरान है हिदायत और रहमत ईमान वालों के लिए। यानी जो फिर इन बातों को मान लेगा, अल्लाह के फैसले को मान लेगा जो उसने कुरान में दिया, उसको तो हिदायत मिल जाएगी, उसके तो इख्तलाफ खत्म हो जाएगा, वो गुमराही से बच जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने उसकी रहनुमाई कर दी ना। और जिसने इस कुरान से हिदायत ली, फिर उसके ऊपर अल्लाह की रहमत भी होगी, क्योंकि जब वो इसकी रहनुमाई के मुताबिक अमल करेगा तो अल्लाह की रहमत का हकदार हो जाएगा। जब इंसान कुरान की तरफ आता है ना, ये उसकी रहनुमाई करता है, और जब जैसे जैसे वो उसको फॉलो करता जाता है, उस गाइडेंस को, अल्लाह की रहमत आती है। लेकिन ये ईमान वालों के लिए, उन्हीं के लिए जाहिर है जो इसको मानेंगे, जो मान जाएगा उसके लिए ये सब कुछ है। उसको ये कुरान रास्ता भी दिखाता है और उसके लिए रहमत भी बन जाता है। इन्ना रब्बा का यकदी बैनहुम बिहुक्मिही वहुवल अज़ीज़ुल अलीम, और बेशक तेरा रब जो है वो फैसला करेगा इनके दरमियान अपने हुक्म से। कब फैसला करेगा? कयामत के दिन। फिर एक फैसला है, ये जितने भी इख्तलाफात हैं उनका फैसला अल्लाह ताला कयामत के दिन कर देगा, हक और बातिल के दरमियान फैसला हो जाएगा, जजा और सजा के लिए फैसले कर दिए जाएंगे। और ये फैसले कौन करने वाला है? जो अजीज़ भी है और अलीम भी है। अजीज़ ज़बरदस्त कुदरत रखने वाला, यानी फिर अल्लाह ताला जो फैसला करेगा तो वो उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने की भी ताकत रखता है, क्योंकि वो अजीज है ना, गालिब है, जबरदस्त है। अब कुछ लोग होते हैं कि दुनिया के अंदर कई जज फैसले देते हैं, हमारे मुल्कों की बात करते हैं, दूसरी जगहों पे तो नहीं, वो फैसला देगा जज, वो उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत ही नहीं होगी, वो इम्प्लीमेंट करवा ही नहीं सकता, कई तरह से मुजरिम बच जाते हैं। तो अल्लाह ताला जो फैसला करेंगे ना कयामत के दिन, बच नहीं सकेगा उस फैसले से कोई। अगर किसी के लिए मसलन जहन्नम का फैसला कर दिया गया, तो उसको वो इम्प्लीमेंट करने की भी ताकत रखता है। अब वो मुजरिम कहीं से सिफारिशें ला के या अपनी कोई ताकत ला के उस फैसले से को एग्जीक्यूट कराने से अपने आप को बचा नहीं सकता। और वो अलीम भी है, वो अपने इल्म के मुताबिक फैसला करेगा, उसकी बेस पे फैसला करेगा, इसीलिए फैसला जो होगा वो पूरा इंसाफ के मुताबिक होगा। तो जिसके पास इल्म होता है ना, वही इंसाफ से फैसला कर सकता है ना। अब दुनिया के इंसान तो इंसाफ से इतना फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास अपना जाति कोई इल्म नहीं होता, वो तो गवाहियों से या शहादतों से और इन चीज़ों से फैसले करते हैं। फतवक्कल अलल्लाह इन्नका अलल हक्कल मुबीन। तो आप ए नबी अल्लाह पे भरोसा करें, आप इनकी बातों का गम ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है ना कि आप मुखालफीन से तंग दिल ना हो, अल्लाह ताला आपका फैसला करने वाला है, आप अल्लाह पे भरोसा करें। इन्नका अलल हक्किल मुबीन, आप सही रास्ते पर हैं, आपने जो रास्ता अपनाया वो बिल्कुल सीधा है। तब आपको ये बातें सारी समझ आई, ये सारी एक सीक्वेंस में चल रही है ना, कि पहले अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये इनके आखरत के बारे में जो इल्म है वो तो थक चुका है, ये जिन चीज़ों के पीछे जा रहे हैं, जिस इल्म के पीछे ही अपने जिस जिस चीज़ को इन्होंने सोर्स बनाया, उसकी वजह से तो बिल्कुल अंधे हो गए, बिल्कुल ही शक में पड़ गए, जो सही इल्म है उसकी तरफ ही आते नहीं। और मुजरिमों का अंजाम देखो, उससे तुम्हें पता चलेगा कि कयामत वाकई आने वाली है। अगर तुम आखरत के ऊपर कुछ दलील चाहते हो तो ये देख लो, वो लोग जिनको दुनिया के अंदर अल्लाह की बात सच हो गई, उनके ऊपर तो आखरत में भी सच होगी। और आप इनके ऊपर गम ना करिए, जो कुछ कर रहे हैं, तमाम अंबिया के साथ ऐसा ही मामला होता रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया गया कि आप इनको कह दें कि जिस अजाब की तुम जल्दी कर रहे हो, सकता तुम्हारे पास ही आ गया हो। और आपका रब लोगों पर बड़ा फजल करने वाला है, उसकी रहमत है कि उसने मोहलत दे रखी है, लेकिन एक अक्सर लोग इस पर शुक्र नहीं करते और उस देर को, उस मोहलत को गनीमत नहीं समझते। उनको तो चाहिए कि उस मोहलत में हक को मांगे अल्लाह से, बल्कि उल्टा इनकार करते हैं और मजाक करते हैं और जल्दी चाहते हैं कि जल्दी आ जाए हमारे पास सजा। तो आपके रब को खूब पता है कि इनके दिलों में क्या है और ये क्या दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे कहा गया, इन नकल्ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्म दुआ इदा वल्लौ मुदबिरीन, के बेशक आप नहीं सुनवा सकते मुर्दों को और ना ही आप सुनवा सकते हैं उनको जो के बहरे हैं जब वो पीठ फेर के चले जाए। अब यहाँ पे असल बात क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तसल्ली दी गई है ना, कि आप नहीं परेशान हो इसके ऊपर, आप अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, और आपका काम तो पैगाम पहुँचा देना है। अगर ये नहीं मान रहे तो इसमें आपका कसूर नहीं है, असल बात यह है कि इनके अंदर एबिलिटी खत्म हो चुकी है, इनके अंदर हक को मानने की एबिलिटी नहीं रही। और इसको यहाँ पे तीन एग्जाम्पल्स के साथ साबित किया गया, थ्री एग्जाम्पल्स के साथ, कि किस तरह इनके अंदर हक को एक्सेप्ट करने की सलाहियत खत्म हो गई है, इन्होंने गुम कर दिया। सबसे पहले ये बात की गई कि ये लोग बिल्कुल अब मुर्दों की तरह है। मुर्दा देखा ना आपने, उसके पास आंखें भी होती हैं, कान भी होता है, लेकिन वो किसी की बात सुन नहीं सकता, कुछ फायदा नहीं उठा सकता उन आंखों से, ना देख सकता है ना कुछ। ये भी मुर्दों की तरह हो गए, इनको आप बात सुनाते हैं लेकिन इनको सुनाने का कोई फायदा ही नहीं, इनको ऐसे ही सुनाया जैसे मुर्दे को सुनाया, इनके अंदर बात दाखिल ही नहीं होती। दूसरे ये कि इनकी मिसाल उस बहरे आदमी की तरह है, कि एक तो इंसान डेफ होता है, अब डेफ को भी ठीक है आप कुछ सुना तो सकते हैं, साइन लैंग्वेज से कुछ इशारों से समझा सकते हैं, लेकिन एक वो डेफ है जो बात सुनना ही नहीं चाहता, वो पीठ फेर के मुड़ के वापस चल पड़ा है, तो उसको आप कैसे सुनाएंगे, क्योंकि वो ना आप देख सकता है आपको और ना ही सुन सकता है। तो इनकी भी मिसाल ऐसी है। तो ऐ नबी, आपका नहीं है कसूर, ये लोग ही अब ऐसे हो चुके हैं, इनका हाल ये हो चुका है कि ये उस बहरे की तरह है जो देख भी नहीं रहा, अगर देखता होता तो कुछ बात समझ लेता। यहाँ पे मुर्दे वो मुर्दे नहीं है जो जिस्मों के मुर्दे हों, या डेफ वो नहीं है जो कानों से डेफ हों, बल्कि वो है जो दिल के, जिनके अंधे हो चुके हैं, जिनके दिल बहरे हो चुके हैं, जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं। अब वो बात उनके सामने किए भी जाओ, वो उनके लिए ऐसे ही है जैसे कुछ भी नहीं कहा। आप उनको कुछ सुना रहे हैं, लेकिन वो सुने कैसे सुने, वो तो है ही बहरा। चलो आप उसको कुछ इशारे से बता देंगे, वो इशारे से भी नहीं समझ सकता, क्योंकि वो तो पीठ मोड़ के भी चल पड़ा। तो ऐसे लोगों को फिर कौन उनका हाल दुरुस्त कर सकता, उनको कहाँ से हिदायत मिल सकती है? तो इसका मतलब है, अगर इंसान ने हिदायत पानी हो, उसका दिल भी खुला होना चाहिए, उसके कान भी खुले होने चाहिए, वो बात को सुने। और कौन सी बात सुनना फायदेमंद होती है, ऐसी नहीं जो बस कान के अंदर चली जाए। जैसे कई लोग क्लास में बैठे होंगे, उनके कानों में मेरी आवाज जा रही है लेकिन दिल बंद है। तो कानों में आवाज पहुंचना असल मकसद नहीं है, कानों में आवाज तो काफिरों के भी पहुंचती है। असल जरूरत किस चीज की है कि वो वाला सुनना जो फायदा मंद हो, दिल खुला हुआ हो, इंसान मुर्दों की तरह ना सुने कि कान के अंदर तो मुर्दे की भी आवाज जा रही है लेकिन उससे आगे प्रोसेस नहीं हो रही। और वमा अंता बिहादिल उमी अन दलालतिहिम। और तीसरी जो एग्जाम्पल यहाँ पे इनकी दी गई है कि उनकी तीसरी मिसाल कैसी है, अंधों की जैसी है। अंधे को कोई रास्ता दिखाना भी चाहे तो वो देख ही नहीं सकता, वो अंधा ही हो चुका है। आप अंधे को कैसे रास्ता दिखाएंगे? आप जाहिर है जो कोई राह देखना ही नहीं चाहता, उसने आंखें खुद ही बंद ही की ही नहीं है, आप उसको कैसे दिखाएंगे? तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि इंसान के अपने ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि क्या वो हिदायत लेना चाहता है, क्या वो उसके अंदर तलब है, क्या उसके अंदर तड़प है, क्या वो आंखें दिल कान खुले रखता है। आप किसको सुनवा सकते हैं? इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बि आयातिना फहुम मुस्लिमून। आप नहीं सुना सकते मगर उसको जो ईमान रखता है हमारी आयात पर, फिर वो मुसलमान है। तो सुनता वही है, चेंज उसी के अंदर आती है, इसलाह उसी की होती है जो वाकई बात को मानना चाहता है, जो फरमाबरदार बनना चाहता है। अब आप देख लें, एक ही लेक्चर है, आप 300 लोग सुनते हैं, किसी की जिंदगी बदल रही है, और कोई जहां था वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। फर्क किस चीज में? मेरा तो लेक्चर वही है, सबके लिए एक ही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है? इसका मतलब फर्क लेने वालों में है। जो अंधा हो चुका है उसको कोई दिखा नहीं सकता, जो उसने अंधा रहना ही कबूल कर लिया। जो बहरा हो चुका है, जो मुर्दा हो चुका है, जिसका जमीर मर चुका है, जिसका शऊर मर चुका है, जो हक बात को कबूल करना ही नहीं चाहता, जो फरमाबरदार बनना ही नहीं चाहता, जो इन आयात को मानता ही नहीं है, उसको आप किधर से हिदायत दे सकते हैं, कहाँ से समझा सकते हैं आप उसको? इसी वजह से है कि एक बात को, मिसाल के तौर पे शिर्क की बात है, एक बात को क्या 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 के अब 20वां पारा हो गया, लेकिन बाज लोगों को नहीं समझ आई। वो कुरान पूरा भी खत्म हो जाएगा ना, वो उनको वो वहीं के वहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने वो मुर्दों की तरह बिल्कुल सुनते हैं ही नहीं, कानों में आवाज जा रही है बस, टकरा के बाहर आ रही है। तो जो फैसला कर ले कि मैंने नहीं सुनना, फैसला कर ले कि मैंने सामने आई हुई दलील को भी नहीं देखना, तो फिर उसको कोई नहीं सुनवा सकता। वइज़ा वक़ा अल-क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतन मिनल अर्ज़ तुकल्लिमुहुम। और जब वाक़े हो जाएगी बात, कौन सी बात? कयामत की, यानी कयामत जब वाक़े हो के वक्त का आने वाला होगा, कयामत की बात जब वाक़े होने वाली होगी, उसकी निशानी जब आखिरी निशानियां जाहिर होंगी, तो उनमें से एक निशानी क्या है? एक निशानी है कि अखरजना लहुम दाबत मिनल अर्दी तो कल्ली मुहम। एक निशानी यह है कि उनके लिए जमीन से एक जानवर निकलेगा जो उनसे बात करेगा। और ये कब होगा? जैसे यहाँ पे कहा गया ना, इदा वक़ा अल कौल, ये कब होगा? जब बात हो जाएगी साबित। ये उस वक़्त का जिक्र है, या कहा जाता है कि जिस वक़्त के लोग नेकी की बात बताना और बुराई से रोकना बंद कर देंगे, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का काम नहीं करेंगे। उस वक़्त ये एक जानवर होगा जो ज़मीन से निकलेगा, और ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी होगी। अब आप देखें कि ये कयामत की यानी आखिरी अलामतों में से है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियां ना देख लो। सूरज का मगरिब से तुलू होना, दुखान, दुख है ना धुआं, और दाबतुल अर्द, दाबतुल अर्द माने क्या, इसको दाबतुल अर्द कहते हैं यानी जमीन का जानवर। जब भी आप कहीं सुनेंगे ना ये दाबतुल अर्द कयामत की निशानियों में से, तो आपको ये आयत याद आनी चाहिए। इसका नाम जो हमारे पास आता है हदीस में जसासा का नाम है, मगर दाबतुल अर्द एक अमूमी नाम जो एक इस हदीस में भी है। और खरूज याजूज माजूज, याजूज माजूज निकलेंगे, ईसा अलैहि सलाम आएंगे, दज्जाल आएगा, तीन जगह से ज़मीन धंसेगी, मशरक में, मगरब में, जजीरे अरब में। एक आग है जो अदन से निकलेगी और सब लोगों को हंका के मैदान हशर की तरफ ले जाएगी, जिस मकाम पर लोग रात गुजारने के लिए ठहरेंगे ये आग भी ठहर जाएगी, फिर उनको ले चलेगी। ये मुस्लिम की रिवायत है, तिर्मजी में भी है। इस हदीस से पता चलता है कि कुर्बे कयामत में ज़मीन से ये जानवर निकलना साबित हुआ, यानी आयत से भी साबित होता है और इस हदीस से भी। और ये भी पता चलता है कि तुकल्लिमुहुम यानी वो लोगों से बात भी करेगा, और ये जानवर आम जानवरों की तरह पैदा नहीं होगा बल्कि अचानक ज़मीन से निकलेगा। ये बात भी इसी हदीस से भी समझ आती है ना। और फिर ये कि ये कहाँ से निकलेगा, तो जो हमें एक तवील हदीस से एक बात पता चलती है वो ये पता चलती है कि ये मक्का में कोहे सफा से निकलेगा, सफा की पहाड़ी से निकलेगा, और अपने सर से मट्टी झाड़ता हुआ मस्जिद हराम में हिजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पहुंच जाएगा। लोग उसको देखकर भागने लगेंगे, एक जमात रह जाएगी। ये दाबा उनके चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा, और इसके बाद वो जमीन की तरफ निकलेगा। हर काफिर के चेहरे पर कुफर का निशान लगा देगा, कोई उसकी पकड़ से भाग नहीं सकेगा। ये हर मोमिन और काफिर को पहचानेगा। और ये किस टाइम पे निकलेगा, ये हदीस में आता है कि क़यामत से पहले चाश्त के वक्त निकलेगा, दोहा का वक्त होता है ना, ये उस वक्त निकलेगा। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की आखिरी अलामतों में से सबसे पहले सूरज का मगरिब से तुलू होना होगा, और सूरज बुलंद होने के बाद दाबतुल अर्द निकलेगा। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए इसके फौरन बाद ही क़यामत आ जाएगी, चाहे पहले सूरज मगरिब से निकल आएगा या दाबतुल अर्द निकल आएगा, यानी जो भी पहले निकलेगा ना उसके बाद बस फौरी क़यामत ही होगी। और ये सही मुस्लिम की रिवायत में है कि सबसे पहले जो निशानी जाहिर होगी वो सूरज का मगरिब से निकलना और दाबातुल अर्द का दुहा के वक्त आ जाना, ये दोनों में से जो पहले होगा इसके बाद ही दूसरा होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुस्लिम की रिवायत एक और है, कि 6 चीज़ों की आमद से पहले ही नेक आमाल कर लो। सूरज का मगरिब से निकलना, धुएं का आना, दिज्जाल का आना, दाबातुल अर्द का आना, तुम में से हर एक का खास उमरा अमर और आम अमर, यानी तुम में से हर एक के साथ वो बात करेगा। दाबा तो यानी जो भी उस वक्त लोग होंगे उनके साथ बात करे, लेकिन अनेक आमाल हर एक उस वक्त कर उससे पहले कर ले, क्योंकि जब वो आ जाएगा दाबतुल अर्द तो उस किसी की भी तौबा कबूल नहीं होगी, किसी का भी ईमान लाना भी कबूल नहीं होगा। और ये भी कहा जाता है एक हदीस में है मुसनद अहमद की है, कि काफरों के नाक पर अंगूठी से मोहर करेगा और मोमिनों के चेहरे लकड़ी से चमका देगा। यानी इतना ज़्यादा वो एक हदीस में पता चलता है कि इतना ज़्यादा वो वाजे कर देगा ना कि सबको पता चल जाएगा कि ये मोमिन है और ये काफिर है। एक और हदीस में आता है कि दाबतुल अर्द 3 दफ़ा निकलेगा, दूर दराज के जंगल से जाहिर होगा और उसका जिक्र शहर में यानी मक्का तक ना पहुंचेगा, फिर एक लंबे ज़माने के बाद दोबारा जाहिर होगा और लोगों की ज़बानों पर इसका किस्सा चढ़ जाएगा, यहाँ तक कि मक्का में भी इसकी शोहरत पहुंच जाएगी। फिर जब लोग अल्लाह की सबसे हुरमत वाली अजमत वाली मस्जिद मस्जिद हराम में होंगे, तो उसी वक्त अचानक दाबतुल अर्द इनको नजर आएगा, रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान अपने सर से मट्टी झाड़ रहा होगा। लोग उसे देखकर इधर उधर होने लगेंगे, ये मोमिनों की जमात के पास आएगा और उनके मुंह को रोशन सितारे की तरह चमकदार कर देगा। इससे भाग कर ना बच कर ना छुप कर कोई रह सकता है, यहाँ तक कि एक शख्स नमाज शुरू करके इससे पनाह चाहेगा, ये उसके पीछे से आकर कहेगा अब नमाज को खड़ा हुआ है, फिर इसकी पेशानी पर निशान कर देगा और चला जाएगा। इसके इन निशानात के बाद काफिर और मोमिन का साफ तौर पे फर्क वाजे हो जाएगा। यहां तक कि मोमिन काफिर से कहेगा, ए काफिर मेरा हक अदा करो, और काफिर मोमिन से कहेगा, ए मोमिन मेरा हक अदा कर। यानी इतने वाजे हो जाएंगे इसके बाद मोमिन और काफिर। और बाकी इसके बारे में कई अहादीस आती है, मगर उनकी इतनी ज्यादा ऑथेंटिसिटी का नहीं पता चलता। मगर यहां से हमें ये तो पता चलता है कि ये एक जानवर है जो कि निकलेगा और लोगों से कलाम भी करेगा। इतना ही हमारे लिए जानना काफी है। और ये आगे जो बात है, इन नन्नासा कानू भी आयाती ना ला यूकिनून, के बेशक लोग थे हमारी आयतों से यकीन नहीं रखते। शायद ये हो सकता है कि अल्लाह ताला का कलाम है, कि उस वो ऐसा वक्त होगा कि लोग अल्लाह की निशानियों पर यकीन नहीं रखते होंगे, तो अल्लाह ताला इस जानवर को भेजेगा। लोगों के सामने एक बहुत बड़ी निशानी होगा ना ये। और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो जानवर ये कहे कि लोग अल्लाह की निशानियों पर यकीन नहीं रखते, ये जानवर ये कलाम करे, क्योंकि कलाम से बाद ही फौरन आ गया ना कि जो इनसे कलाम करेगा। क्या कलाम करेगा? कि ये अल्लाह की निशानियों पर लोग यकीन नहीं रखते, वो इट सेल्फ एक बहुत बड़ी निशानी होगा। व यहु मना शुरू मिन कुल्ली उम्मतिन फौज मिम्मन युकज्जिबु बि आयातिना। और क्या होगा? जिस दिन घेर लाएंगे, इकट्ठा करेंगे हर एक उम्मत से, हर एक ग्रोह से एक फौज को, हर एक बड़े ग्रोह में से एक ग्रोह को, एक बड़े जम्मे गफीर को निकाला जाएगा। ये कौन सा ग्रुप होगा? मिम्मन युकज्जिबु बि आयातिना, जो झुटलाते थे हमारी आयात को। फहुम यूजा उन, फिर उनको भी डिवाइड कर दिया जाएगा, उनके भी ग्रो ग्रो कर दिए जाएंगे। ये कैसे होगा? एक बड़ा ग्रुप होगा, एक बड़ी फौज उम्मत होगी। कियामत के दिन सबको जब जमा किया जाएगा ना, तो उसमें हर उम्मत में से एक ग्रो निकाल के अलग कर दिया जाएगा। ये कौन सा ग्रुप होगा? जो अल्लाह की आयात को नहीं मानता था। और ये बहुत ज्यादा कसीर तादाद में होंगे लोग, इसलिए फौज का किया गया ना, बहुत ज्यादा तादाद में होंगे। फिर उनमें कैटेगरीज बना दी जाएंगी। कैसे कैटेगरीज? दर्जे कर दिए जाएंगे ना, ये कहा गया ना फहम यूजाउन, वो ग्रो ग्रो कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है किसी को, कोई बहुत ज्यादा इनकार करने वाला था, कोई 100% इनकार करने वाला, कोई 90%, कोई 80%, कोई 70%, कोई 50% मानता था आयतों को अल्लाह की, और 50% नहीं मानता था, तो उसके मुताबिक उनके ग्रुप कर दिए जाएंगे। समझ आई बात? हत्ता इजा जाऊ, यहां तक के जब वो सब आ जाएंगे, इकट्ठा करके लाया जाएगा ना इनको, जब वो आ जाएंगे अल्लाह की अदालत में। काल अकजब तुम भी आयाती, तो अल्लाह ताला पूछेंगे उनसे, क्या तुमने मेरी आयात को झुठलाया? वलम तो ही तू बिहा इल्मन, और जबकि तुमने उसको बारे में टोटली जानते भी नहीं थे, उसका इल्मी अहाता भी नहीं किया था। अम्मा जा कुन तुम तामलून, क्या कुछ थे तुम अमल किया करते। ये इन लोगों को, अब आप समझ गए ना, एक बड़ी उम्मत है, उसमें से एक ग्रुप को निकाला गया, फिर उस ग्रुप में से जैसे डिफरेंट क्लासेस करती गई, ये ज्यादा इनकार करने वाले, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। अब इस पूरी फौज को लेकर अल्लाह की अदालत में पेश किया गया, तो अल्लाह ताला पूछते हैं, तुमने मेरी आयतों को ऐसे ही झुठला दिया, सोचे समझे बगैर बस यूं ही इनकार कर दिया। यानी ये नहीं है कि तुमने रिसर्च की हो, तुमने उसके बारे में जाना हो, मान देखा हो, फिर उसके बाद तुम्हें पता चला हो कि नहीं ये तो सच्ची बात नहीं है और ये नहीं है, और फिर तुमने इनकार कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जानते ही नहीं थे, कभी तहकीक ही नहीं की, कभी गौर व फिक्र ही नहीं किया, बस ऐसे ही इनकार कर दिया। तो क्या तुमने कोई तहकीक करके रिजल्ट निकाला था कि ये आयतें नहीं माननी? अगर ऐसा नहीं था, फिर तुम्हें क्या हक था कि तुम मेरी आयतों का इनकार करते और इनमें बहसें करते और इनका मजाक उड़ाते? अब हमें देख लें कि हम बाज आयात का कुरान की इनकार कर देते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, और बाज को मानते हैं, पिक एंड चूज करते हैं ना, जो हमारी पसंद की होती है उनको तो ले लेते हैं, और बाकियों को जो पसंद की नहीं होती, जिनके अंदर कुछ हमें लगता है कि ये हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है, उनको छोड़ देते हैं। 20 पारे पढ़ने के बाद खुद से जरा पूछें कि अल्लाह का कौन सा हुक्म है जिसको अभी भी मैं नहीं मानती और समझती हूँ कि ये अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ये ऐसे ही है बस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बैकवर्ड और आउटडेटेड हो गया, अपने लिए समझती नहीं हूँ। बास पे तो ईमान लाती हूँ या मैं ज़्यादा पे तो ईमान लाती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे भी अहकाम हैं वो पढ़ती हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती, लगता नहीं है कि ये कुछ ज़्यादा अमल की बात है, इसके अंदर कोई ऐसा पहलू निकलता है कि इसके ऊपर आज के दौर में अमल किया जाए। तो उन आयतों को मैं कुछ ज़्यादा समझती नहीं, बाकी सारा मानती हूँ। तो आप खुद सोच लें इसमें कैटेगरीज होंगी, ज़्यादा मानने वाले, सॉरी ज़्यादा झुटलाने वाले, उससे कम, उससे कम, उससे कम। कुरान की किसी भी आयत को हम झुटला नहीं सकते, हम इनकार नहीं कर सकते उसका, ख्वाह वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हो या ना हो। तो अल्लाह ताला फिर उस दिन पूछेंगे, क्या सोच के तुमने इसका इनकार किया मेरी आयतों का, क्या तुमने कोई इसके रिसर्च की थी, क्या तुमने इसको समझने की कोशिश की थी, क्या तुमने इसके लिए कोई वक्त निकाला था, क्या तुमने इसके ऊपर गौर व फिक्र की कोई फुर्सत निकाली थी। जब नहीं निकाली तो तुमने यूं ही बस इनकार कर दिया, बस ऐसे ही झुठला लिया। और वाकई अगर देखा जाए तो लोग जो बहसें करते हैं ना कुरान में, अगर आप उनसे पूछें, वो कहते हैं हम ये नहीं मानते और ये क्या कुरान के अंदर, अगर आप जरा उनसे पूछें सही कि आपने क्या कुरान कितना पढ़ा, कितना समझा है, आप देखेंगे कि उनमें से हार्डली किसी ने आज तक कुरान पाक को पढ़ा होगा पूरा, या समझा होगा, या उसकी तालीम ली होगी। ज्यादातर कैसे होता है, सुनी सुनाई बात है, हमने सुना है कुरान के अंदर तो ये, देखिए कुरान में ये कहाँ है, ये बालों का जिक्र कहाँ है, कुरान में इस चीज का जिक्र। आपने तहकीक की, आपने इन आयतों को समझा, उनको ये भी नहीं पता है कहाँ पे ये लिखी हुई है, कौन सी सूरत में है, कुछ भी नहीं मालूम है ही नहीं कुछ, बस ऐसे ही इनकार किए चले जाना, क्योंकि वक्त का नॉर्म ऐसा चल रहा है, हर एक ही ये कह रहा है, तो इसलिए हम भी यही कहते चले जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला उस दिन सवाल करेंगे, क्या करते रहे तुम क्या करते थे, बस यूं ही कह दिया करते थे ना, तुमने मेरी आयतों के लिए वक्त निकाला ना, तुमने इनकी कोई तहकीक की ना, तुमने इनको समझा ना, तुमने इनको पढ़ा, बस ऐसे ही कह देना हम नहीं मानते, ये कहां से जवाज निकलता। वकाल कौलू अलैहिम बिमा ज़लमू फहुम ला यंतिकून, तो ऐसे जो लोग होंगे ना इन पे बात साबित हो जाएगी, वजह इसके कि जो उन्होंने जुल्म किया, ये उनका जुल्म है, देखिए ये कितना बड़ा जुल्म है, आपने एक चीज को देखा नहीं है, आपने उसको समझा नहीं है, आपने उसके बारे में जाना ही नहीं, और बस घर बैठे ही ऐसे ही बस बातें किए जाना कि हम नहीं ये मानते और हम वो नहीं मानते। आज कितनी अक्सरियत मैं कहती हूँ लोगों की ऐसी है कि जिनके पास भी जिन जो आपके साथ डिस्कस करते हैं ना, फजूल बातें बोलते हैं और बहसें करने लगते हैं और कुरान के ऊपर एतराजात करने लगते हैं, आप उनसे जरूर पूछा करें कि आपने कितना अरसा इसके ऊपर तहकीक की, कितना आपने कुरान पढ़ा, कितना इसको समझने में आपने वक्त लगाया, कितने साल जिंदगी के आपने इसको दे दिए हैं जो आज आप इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि ये सही नहीं है। आप देखेंगे निल, बिल्कुल कुछ नहीं कभी पढ़ा होगा, कोई किसी ने टीवी से सुना होगा, किसी ने फलां को तकरीर करते सुना होगा, किसी ने किसी जगह पे ऐसे ही पढ़ लिया होगा, ये होगा उनका सोर्स। तो फिर तुम्हें ये जुल्म नहीं है तो और क्या है कि तो फिर उसके बाद तुम ऐसी बातें करने लग जाओ, ये जजमेंट्स देने लग जाओ कि नहीं बस ये ऐसे ही है और ये बेकार, और ये जो हदीस को भी नहीं मानते, आज आप देखे हैं जो लोग कहते हैं कि मुनकरीन हदीस जो है जो हदीस को मानते ही नहीं, आप जरा उनसे पूछें उनको हदीस के बारे में कितना पता है, आप जरा उनसे पूछें कि हदीस रिकॉर्ड कैसे हुई, क्या आप जानते हैं कि हदीस को कंपाइल कैसे किया गया, कैसे रिकॉर्ड हुई, किस तरह से लिखी गई, क्या आप कुछ जानते हैं, कुछ भी नहीं। कौन उनको तहरीर करता था, कुछ नहीं पता, हदीस है क्या, कुछ नहीं पता, बस हमने नहीं मानना, ये कौन सा लॉजिक है। तो अल्लाह ताला सवाल करेंगे, देखें ये भी एक सवाल है अल्लाह की अदालत में, अब तुमने जब कुछ इल्म ही नहीं लिया था तो तुम खामखा ऐसे ही बातें करने लगे, तो अब जब बात उनके ऊपर साबित हो जाएगी ये उनका जुल्म है, तो अब ये लाजवाब होंगे, अब जवाब उनको क्या आना है, जवाब उनके खिलाफ तो हुज्जत तमाम हो गई ना, बात पूरी हो गई, जुर्म साबित हो गया, अब तो कोई बहाना तो उनके पास होगा नहीं, वाकई उन्होंने तो कोई तहकीक की ही नहीं थी, सुनी सुनाई बातों को बस आगे करते चले गए। और जो लोग कई एथीस्ट किस्म के लोगों से बड़े इंप्रेस होते हैं ना, वो कहीं कंप्यूटर पे पढ़ लिया, कहीं ये वो फस ये जो अब इंटरनेट ब्राउजिंग करते करते कहीं से कोई आर्टिकल पढ़ लिया, कहीं उन्हीं से मुतासिर होके और वो ऐसी बातें करने लगते, क्या उन्होंने कुरान पढ़ा, क्या उन्होंने इसकी तहकीक की, तो उस दिन फिर बोल नहीं सकेंगी, बोलती बंद हो जाएगी। अलम यरो अन्ना जालना लैला लियस्कुनु फीह वन्नहारा मुबसिरा, क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ने रात को देखो कैसे तुम्हारे लिए सुकून के लिए बनाया और दिन को रोशन। ये जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते, एक एक सिर्फ दिन और रात की तब्दीली से ही वो अल्लाह ताला की कुदरत को, उसकी ताकत को पहचान सकते हैं। अगर इंसान अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझता है तो जरा मिल के, सारे मिल के दिन और रात को तब्दील करके दिखाओ। अब दिन आ गया ना, इसको रात बना के दिखाओ। तो जब अल्लाह की कुदरत को तुम देखते हो, समझते हो कि ये कोई है करने वाला, तो उसके आगे झुक क्यों नहीं जाते? देखो तो उसने तुम्हारे लिए क्या क्या नेमतें बनाई। इन्ना फी ज़ालिका लआयात लिक़ौमी यूमिनून, ये उनके लिए निशानियां हैं जो ईमान रखने वाले हैं। जो कोई मानना चाहे तो उसको ये निशानी भी नजर आएगी, जो मानना ही ना चाहे तो देखें बहुत सारे लोग हैं जो आज घूमते फिरते हैं, उनको तो पता ही नहीं कि ये भी कोई अल्लाह की तरफ से कोई निशानी है। व यौमा युनफ़खु फिस्सूरी फ़फ़ज़ा मन फिस्समावाति व मन फिल अर्ध इल्ला मन शा अल्लाह, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा ना तो डर जाएंगे कौन, जो आसमानों में और जमीन में, मगर सिवाय उसके जिसको अल्लाह ही चाहे तो उस घबराहट से महफूज रखे। वरना ऐसी जो आसमानों की मखलूक है और जितनी जमीन की मखलूक है, सारी घबरा जाएगी, डर जाएगी। और आप देखें आज तो लोग डरते नहीं है ना, आज तो लोगों के दिल इतने सख्त हो गए हैं कि अल्लाह की आयतें सुन सुन के भी दिल नरम नहीं होते, पसीजते नहीं है। जब सूर की आवाज़ आएगी ना तो दिल घबरा जाएंगे, इतने सख्त डर जाएंगे, इतनी दहशत तारी हो जाएगी। सोचें जिस आवाज़ से फरिश्ते डर जाएं, आसमानों में जो हैं वो भी डर जाएंगे ना, यहाँ पे है ना, तो आसमानों में कौन है, फरिश्ते। और वह मन फिल अर्ध, जो भी जमीन में है, चाहे वो जानवर है, इंसान है, चरिंद परिंद है, सब सब डर जाएंगे, सिवाय जिसको अल्लाह चाहे। वह कुल्लु नताहु दाखिरीन, और सब के सब आएंगे उसके पास जलील होके, आजिज होके, हकीर होके। तो ये क्या होगा, जब सूर फूंका जाएगा, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंकेंगे, उस वक़्त के बारे में ये आयत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल मेरी उम्मत में 40 ठहरेगा। अब रावी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आपने 40 दिन कहा या 40 महीने या 40 साल कहा। अब देखिए इसी से भी पता चलता है ना हदीस कितनी, यानी किस तरह बहुत एहतियात के साथ आगे रिवायत की गई। उन्होंने खुद नहीं सोचा कि चलो मैं खुद ही कुछ बना लेता हूँ, कुछ साल कह देता हूँ, गालबन आपने शायद साल ही कहा होगा, या आपने ये महीने ही कहा होगा या दिन ही कहा होगा। उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया, मुझे याद नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। तो फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा, वो सूरत शक्ल में बिल्कुल उरवा बिन मसूद की तरह होंगे, जो कौन, ईसा अलैहिस्सलाम। आप उन उसको दज्जाल को ढूंढ निकालेंगे और उसे हलाक कर देंगे। फिर 7 साल ऐसे गुजरेंगे कि दुनिया में दो कोई ऐसे इंसान ना होंगे जिनमें आपस में बुग्ज़ और अदावत हो, यानी दुनिया में इतना पीस और हारमनी होगा ना कि कोई बुग्ज़ रखने वाला, कोई दो इंसान ऐसे नहीं होंगे जिनमें कोई बुग्ज़ हो। 7 साल ऐसे गुजरेंगे। फिर अल्लाह ताला शाम की तरफ से भीनी भीनी ठंडी हवा चलाएगा जिससे हर मोमिन फौत हो जाएगा। एक जर्रे के बराबर भी जिसके दिल में खैर है या ईमान है उसकी रूह कब्ज़ कर लीजिएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि क्यामत आने लगी है ना, और इसका मंजर देखना इतना दहशतनाक, इतना खौफनाक मंजर होगा, तो इनकी रूहें पहले ही कब्ज कर ली जाएंगी। यहां तक कि अगर कोई शख्स किसी पहाड़ की खो में भी घुस गया हो तो यह हवा वहां पे भी जाके इसको फना कर देगी। अब जमीन पे सिर्फ बद लोग रह जाएंगे, जो परिंदों जैसे हल्के और चौपायों जैसे बेअकल होंगे। इनमें से भलाई बुराई की तमीज उठ जाएगी। इनके पास शैतान पहुंचेगा और कहेगा तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने बुतों की पूजा ही छोड़ दी है, ये लो बुत परस्ती शुरू करो। तो ये बुत परस्ती शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला इनको रोजियां पहुंचाता रहेगा और खुश को खुर्रम रखेगा। सुभान अल्लाह, देखिए अल्लाह ताला की फिर भी, यानी उसका उसकी देन है और उसकी उसका फजल देखें कि अल्लाह ताला फिर भी इन बुत परस्तों को रोजियां पहुंचाता रहेगा। ये इसी मस्ती में होंगे कि सूर फूंकने का हुक्म मिल जाएगा, जिसके कान में आवाज पड़ेगी दाएं बाएं लौटने लगेगा। सबसे पहले इसे वो शख्स सुनेगा जो अपने ऊंटों के लिए हौज ठीक कर रहा होगा, सुनते ही बेहोश हो जाएगा और सब लोग बेहोश हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा जिससे लोगों के जिस्म उठने लगेंगे। फिर दोबारा नफखा फूंका जाएगा जिससे सब खड़े होंगे, वहीं आवाज लगेगी लोगों अपने रब के पास चलो, वहां ठहरो, तुमसे सवालों जवाब होगा। फिर फरमाया जाएगा आग का हिस्सा निकालो, पूछा जाएगा कितनों में से कितने, यानी आदम अलैहि सलाम से कहा जाएगा आग का हिस्सा निकालें, तो वो कहेंगे कितनों में से कितने, तो फरमाया जाएगा हर हजार में से 999 आग का हिस्सा है। ये वो दिन होगा जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा और हमला के हमल गिर जाएंगे। तो पहला नुस्खा यहाँ पे जो बात की गई ना, वो घबराहट का है, दूसरा बेहोशी का जिसमें मौत आ जाएगी, और तीसरा दोबारा जी उठने का। तो बाज़ जगह पे ये आता है कि तीन सूर फूंके जाएंगे, ये जैसे मैंने आपको बताया, और बाज़ जगह पे आता है कि दो सूर फूंके जाएंगे, एक घबराहट के साथ ही मौत आ जाएगी और दूसरा जी उठने का। और दूसरी इस हदीस में जैसे पता चलता है कि एक घबराहट का होगा, फिर उसके बाद दूसरा सूर फूंका जाएगा जिससे सारे बेहोश होकर मर जाएंगे, और तीसरा ऐसा होगा कि जिससे फिर दोबारा उठ जाएंगे। एक और हदीस के अंदर इसी के बारे में बताया गया है, उसमें यह है कि उस दिन ज़मीन बहुत ज़ोर से हिलने लगेगी, और इतनी ज़ोर से हिलने लगेगी और ऐसे उसके जलजले आएंगे एक के बाद एक के, दिल धड़कने लगेंगे और कलेजे उलटने लगेंगे, लोग इधर उधर गिरने लगेंगे, माएं अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी, हामला औरतों के हमल गिर जाएंगे, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, शयातीन मारे घबराहट और परेशानी के भागते भागते ज़मीन के किनारों पर आ जाएंगे, यहाँ से फरिश्ते इन्हें मार मार के हटाएंगे, लोग परेशान हाल हवास बाख्ता होंगे, कोई जाए पनाह नजर नहीं आएगी, कोई अल्लाह के हुक्म से बचाव का तरीका नहीं नजर आएगा, एक दूसरे को आवाजें देंगे लेकिन सब अपनी अपनी मुसीबत में पड़े हुए होंगे कि अचानक जमीन फटनी शुरू हो जाएगी, कहीं इधर से फटी कहीं उधर से फटी, अब तो अबतर हालत हो जाएगी, उससे भी बदतर हो जाएगी, कलेजे कपकपाने लगेंगे, दिल उलट जाएंगे, और इतना सदमा और इतना गम होगा जिसका अंदाजा नहीं हो सकता। जो आसमान की तरफ नजर उठाएंगे तो देखेंगे घुल रहा है और वो भी फट रहा है, सितारे झड़ रहे हैं, सूरज चांद बेनूर हो गए हैं। हाँ, मुर्दों का इसका कोई इल्म नहीं होगा। हज़रत अबू हुरैरा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, कुरान की ये जो आयत में आया है कि फ़फ़ज़िया मन फिस समावाती व मन फिल अर्दी इल्ला मन शाअ अल्लाह, यानी ज़मीन और आसमान के सब लोग घबरा उठेंगे सिवाय जिनको अल्लाह चाहे, तो इससे मुराद वो कौन लोग हैं जिनको अल्लाह घबराहट से महफूज रखेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शहीद लोग हैं और वो अल्लाह के यहाँ जिंदा हैं, रोजियां पाते हैं, और सब जिंदा लोग घबराहट में होंगे, लेकिन अल्लाह ताला उन शहीदों को इस परेशानी से महफूज रखेगा। ये तो अजाब है जो वो अपनी बदतरीन मखलूक पर भेजेगा, ये कयामत का देखना भी अजाब से कम थोड़ी है। इसी वजह से तो है ना, या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम, ए लोगो अल्लाह से डरो। क्यों? इसलिए कि कयामत का जलजला बहुत बड़ी चीज़ है, जिस दिन तुम उसको देख लोगे, हर एक दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी, हर हमल वाली का हमल गिर जाएगा, तू देखेगा कि लोग बेहोश होंगे, नशे में होंगे, जैसे कि हालांकि वो नशे में नहीं है बल्कि अल्लाह का अजाब ही इतना सख्त है कि इन्हें बदहवास कर देगा। यही हालत रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा, बहुत देर तक ये घबराहट का आलम रहेगा। फिर अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बेहोशी के नुफ़े का हुक्म देंगे, यानी जिसमें मौत भी साथ है ना, फिर उस नुफ़ा के फूंकते ही ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक बेहोश हो जाएगी और फिर अचानक सारे मर जाएंगे। फिर मलकुल मौत अल्लाह के हजूर में हाजिर होके अर्ज करेंगे, ऐ बारी ताला, ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक मर गई है मगर जिसे तूने चाहा। अल्लाह ताला इल्म के बावजूद सवाल करेंगे, अच्छा फिर बाकी कौन बचा है, यानी जिसको अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ताला को हालांकि मालूम है लेकिन अल्लाह ताला सवाल करेंगे अब बाकी कौन बचा है, वो जवाब देंगे तू बाकी है, तू हय और कयूम है, तुझ पर कभी फना नहीं है, और अर्श के उठाने वाले फरिश्ते बाकी हैं और जिब्राइल और मीकाइल बाकी हैं। समझ आई बात? कौन कौन बाकी अभी रह गया? सारी मखलूक अब फना हो जाएगी। अब सारे मर जाएंगे, सिर्फ कौन बाकी रह गया? जिब्राइल, मिकाईल और अर्श को उठाने वाले फरिश्ते। तो अर्श को उस वक्त जुबान मिलेगी और वह कहेगा, ऐ परवरदिगार, क्या जिब्राइल और मिकाईल भी मरेंगे? अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैंने अपने अर्श से नीचे वालों पर सब पर मौत लिख दी है, चुनाचे ये दोनों भी फौत हो जाएंगे। फिर मलकुल मौत अल्लाह ताला के पास आएंगे और खबर देंगे, जिब्राइल मिकाईल भी मर गए। अल्लाह ताला बावजूद अपने इल्म के पूछेंगे, अब कौन बाकी है? मलकुल मौत जवाब देगा, बाकी एक तो तू है जिस पर कभी कोई फना नहीं है, और तेरे उठाने वाले, अर्श के उठाने वाले फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, अर्श के उठाने वाले भी मर जाएं, उस वक़्त वो भी मर जाएंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से इसराफील से सूर को अर्श ले लेगा। मलकुल मौत हाजिर होकर अर्ज करेंगे, या अल्लाह, अर्श के उठाने वाले फरिश्ते भी मर गए। अल्लाह ताला पूछेंगे, हालांकि अल्लाह ताला जानते हैं कि अब बाकी कौन है? मलकुल मौत जवाब देंगे, एक तू जिस पर कोई मौत नहीं, और एक तेरा ये गुलाम, यानी सिर्फ मलकुल मौत बच जाएगा। सारों की जान अब कब्ज करने के बाद अब सिर्फ मलकुल मौत बच गया, ना कोई फरिश्ता बाकी बचा है। अब ये आखिर तक, एंड तक कौन से फरिश्ते बचे? जो कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, ये बचे थे ना। फिर जब इनको भी मौत आ गई और अर्श के उठाने वाले फरिश्तों को भी मौत आ गई, इससे पता चलता है अल्लाह किसी का भी मोहताज नहीं है, सबको मौत आ गई, लेकिन अल्लाह हई और कयूम है, कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता नहीं बचा। तो वो कहेंगे कि अल्लाह, एक तू है जिस पर मौत नहीं, और एक तेरा गुलाम है। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू भी मेरी मखलूक में से एक मखलूक है, तुझे मैंने एक काम के लिए पैदा किया जिसको तू कर चुका, अब तू भी मर जा। चुनाचे वो भी मर जाएंगे। अब अल्लाह ताला अकेला बाकी रह जाएगा जो गालिब है, और जो बगैर माँ बाप के और बगैर औलाद के, जिस तरह मखलूक को पैदा करने से पहले वो अकेला था, फिर आसमानों और ज़मीनों को वो इस तरह लपेट देगा जैसे दफ्तरी कागज़ को लपेटता है। फिर इन्हें 3 मरतबा उलट पलट करेगा और फरमाएगा, मैं जब्बार हूँ, मैं किबरियाई वाला हूँ। फिर 3 मरतबा फरमाएगा, आज मुल्क का मालिक कौन है? आज कौन है? बादशाह कौन है? कोई ना होगा जो जवाब दे। तो अल्लाह ताला खुद ही जवाब देगा, अल्लाह वाहिद कहार। कुरान में है कि इस दिन आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे, अल्लाह ताला इन्हें फैला देगा और खींच देगा जिस तरह चमड़ा खींचा जाता है, कहीं कोई ऊंच नीच बाकी नहीं रहेगा। फिर एक आवाज़ के साथ ही सारी मखलूक उस ज़मीन में आ जाएगी, जो मखलूक की रूहें हैं या रूहें या जिस तरह भी वो मुर्दा हैं, वो उस ज़मीन में आ जाएंगे जिसको अल्लाह ने खींच के बिछाया होगा, अंदर वाले अंदर और ऊपर वाले ऊपर। फिर अल्लाह ताला अपने अर्श तले इस पर बारिश बरसाएगा, फिर आसमान को हुक्म होगा और वो 40 दिन तक बारिश बरसाएगा, यहाँ तक कि पानी इनके ऊपर 12 हाथ तक चढ़ जाएगा। फिर जिस्मों को हुक्म होगा, वो उगेंगे और वो इस तरह उगने लगेंगे जैसे सब्जियां और तरकारियां उगती हैं, और वो पूरे पूरे मुकम्मल जिस्म जैसे थे ना हम, वैसे ही हम हो जाएंगे, यानी जिस्मानी तौर पर। फिर अल्लाह ताला हुक्म फरमाएगा, मेरे अर्श के उठाने वाले फरिश्ते जी उठें तो वो जिंदा हो जाएंगे। फिर इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि वो भी जिंदा हो जाएं, फिर सूर लेकर मुंह से लगा लें। फिर फरमान होगा, जिब्राइल और मीकाइल जिंदा हो जाएं, ये दोनों भी उठ जाएंगे। फिर अल्लाह ताला रूहों को बुलाएगा, मोमिनों की नूरानी रूहें होंगी और काफिरों की रूहें अंधेरी रूहें होंगी, इन्हें लेकर अल्लाह ताला सूर में डाल देगा। फिर इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि अब सूर फूंक दो, चुनाचे फिर तीसरा, वो वाला जो तीसरा सूर आपको बताया ना, वो तीसरा सूर फूंका जाएगा, जिससे रूहें उस इस तरह निकलेंगी जैसे शहद की मक्खियां, तमाम खला इनसे भर जाएगा। फिर अल्लाह ताला का इरशाद होगा, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, हर रूह अपने अपने जिस्म में चली जाए, तो अल्लाह के इस हुक्म पे, आज तो हुक्म नहीं मानते ना, तो अल्लाह के उस हुक्म पर सारी रूहें अपने अपने जिस्मों में कहाँ से दाखिल होंगी? नथनों से, ये नॉस्ट्रिल्स से, नॉस्ट्रिल्स के जरिए चली जाएंगी। जिस तरह जहर सारे जिस्म में फैल जाता है ना, इस तरह रूहें 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 में दौड़ जाएंगी। अब अभी भी देखें ना, हमारी रूह सारे जिस्म में है। फिर जमीन फट जाएगी और उस वक्त फिर लोग अपनी कब्रों से खड़े होंगे। समझ आई ना? अब आपको प्रोसेस समझ आए ना, स्टेप बाय स्टेप, कि किस तरह से होगा, पहले बेहोशी का, और अगर एक ही नफखा लिया जाए, दो यानी जो बेहोशी का भी और मौत का भी है, तो एक नुफखा फूका जाएगा और सारे बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। अगर दो लिए जाएंगे, एक ही बात है, तो पहले घबराहट का होगा, उसके बाद फिर दूसरा नुफखा फूकेंगे इसराफील अलैहिस्सलाम, तो उससे मौत आ जाएगी, और उसके बाद कौन कौन जिंदा रहेगा, ये आपको इस हदीस से पता चला। और फिर किस किस को स्टेप बाय स्टेप मौत आती रहेगी, और इन द एंड मलकुल मौत को जब मौत आ जाएगी और अल्लाह ताला जमीन को इस तरह बिछा देंगे और उसके ऊपर पर जब मी बरसेगा, सारी रूहें वहां पे जिस हालत में भी होंगी, रूहों की या जिस भी हालत में, वो वहां पे ट्रांसफर कर दी जाएंगी, और ये मी बरसेगा और उसे जिस्म उगेंगे, और फिर अल्लाह ताला रूहों को सबको सूर में डाल देंगे, और इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा फूंकेंगे तो रूहें सारी निकल के अपने अपने जिस्मों में चली जाएंगी, और फिर जब जिस्मों में चली जाएंगी तो सब उठ के खड़े हो जाएंगे, फिर ही जमीन फट जाएगी, लोग अपनी कब्रों से खड़े होंगे। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे ऊपर से जमीन फटेगी, लोग दौड़ कर निकल के दौड़ते हुए अपने रब की तरफ चलेंगे। उस वक्त काफिर कहेंगे, आए उस वक्त काफिर कहेंगे आज का दिन बड़ा भारी है। उस वक्त फिर सब नंगे पैरों, नंगे जिस्म, बेखतना एक मैदान में जमा हो जाएंगे, और फिर वो दिन, अस्तग़फिरुल्लाह, कि फिर उस वक्त ऐसी घबराहट होगी, ऐसी घबराहट होगी कि आंखें फट जाएंगी, तुम हैरान होगे, सर झुकाए में होंगे। पहले तो भागेंगे ना अल्लाह ताला की तरफ, ये जैसे यहाँ पे कहा ना, दाखिरीन, आजिज होके, जलील होगे होके, नजरें इंसान की ऐसे झुकी हुई होंगी, कहीं आता है कि पुतलियां खौफ से फैल गई होंगी, और पागलों की तरफ तरह भाग रहे होंगे। फिर वही दिन होगा ना, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मीही व अबी व साहिबतिही व बनी। उस दिन फिर इंसान भागेगा अपने भाई से, अपनी बीवी से, अपनी माँ से, अपने बच्चों से, चाहे आज कोई ना नजर आए, कोई किसी को नहीं पूछेगा, इस दिन वो हैबत होगी। ऐ नबी, इसीलिए तो कहा गया डराओ इनको उस दिन से जो आने वाला है। पर उस दिन उनके दरमियान फैसले किए जाएंगे, और लोग बेतरह गिरेबाजी कर रहे होंगे, यहां तक कि आंसू खत्म हो जाएंगे, आंखें आंसुओं की बजाय खून उनसे निकलने लगेगा, और पसीना इस कदर आएगा कि मुंह तक या ठोड़ियों तक इसमें डूबे होंगे। तो ये वो दिन है कि फिर सारे फरमा बरदार होके, सारे आजिज होके, सारे हकीर होके अब आ गए ना अल्लाह के पास। नहीं आते थे ना, तुम्हें बुलाया करते थे कि आ जाओ अल्लाह का कलाम सुन लो, खुदा के लिए कोई कोई बात सुन लो, कोई समझ लो, नहीं मानते थे, कहते थे हमारे पास टाइम ही नहीं है। अब देखो, अब तो सारे ही धंधे खत्म हो गए, कहाँ गए तुम्हारे वो घर, कहाँ गई गाड़ियाँ, कहाँ गई जॉबें, कहाँ गई वो सब चीज़ें जिनके लिए तुम भागते थे, कहाँ है वो मॉल, वो मार्केटें जिनकी तरफ दौड़ लगती थी तुम्हारी, आज तो दौड़ अल्लाह की तरफ लग रही है। कोई नहीं रुकेगा, ना कोई छुपेगा, उस दिन सब दौड़ रहे होंगे उस तरफ। व तरल जिबाला तहसबुहा जामिदतन वहिया तमुर्रु मर्र सहाब। और तुम देखते हो ना इन पहाड़ों को, देखते हो तुम कि कैसे मजबूत खड़े में, अपनी जगह जमे में तुम्हें लगते हैं ना, लेकिन वो भी बादलों की तरह उड़े फिरेंगे। ये है सनत अल्लाह की, सुना सुन अल्लाह, ये है कारीगरी अल्लाह की, कैसे अल्लाह ने मजबूत बनाया हर चीज को। इन्नहु खबीरुम बिमा तफ़अलून, बेशक वो खबर रखने वाला है साथ उसके जो तुम करते हो। ये अल्लाह की ताकत की निशानी है। ये पहाड़ देखो, जब वो उनको उठा के बादलों की तरह चलाने लगेगा तो उससे कोई चीज उसकी ताकत के आगे हैसियत नहीं रखती। तुम अल्लाह की आयात के खिलाफ बढ़ चढ़ के बातें करते हो ना, उनको झुटलाते हो ना, अगर पिछली आयतों के साथ आप देखें तो देखो वो भी दिन आने वाला है कि फिर पछताओगे इस पर। तुम आज कहते हो ना मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर देखो अल्लाह की कुदरत, पहाड़ भी उसकी कुदरत के आगे देखो कैसे बादलों की तरह चलने लगे। ये अल्लाह की कारीगरी है, ये है अल्लाह की ताकत। देखो अल्लाह की बनाई भी ये चीजें कितनी मजबूत लगती हैं, लेकिन जब अल्लाह इनको चलाएगा तो देखो कैसे यही मजबूत चीजें कैसे रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगी। मन जा अबिल हसना, तो जो कोई लाया नेकी को, फलहु खैरुम मिनहा, तो उसके लिए इससे बेहतर होगा, उसको जो वहां पे मिलेगा ना वो उसकी नेकी से बढ़ के चीज मिलेगी। उसकी नेकी से बढ़ के क्या चीज मिलेगी, जो अल्लाह की मार्फत के साथ आया, जो नेक काम करता हुआ आया। हसना से यहाँ पे मुराद क्या है, तफासीर में आता है इससे मुराद है जो ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे मुराद है, इससे मुराद है जो इंसान ईमान के साथ नेक अमल करके आया, तो उसको उससे भी अच्छी जजा मिलेगी जो वो करके आया। अब बाज कहते हैं कि सबसे बड़ी नेकी तो है ही ला इला इल्लल्लाह, इससे बड़ी को तो कोई चीज़ हो नहीं सकती, तो फिर इससे बड़ी क्या चीज़ मिलेगी। एक तो इसका माना यह है कि बंदा एक नेक अमल करके लाता है ना, तो अल्लाह ताला इसका 10 गुना या उससे भी ज़्यादा अजर देता है, या 700 टाइम्स देता है, और कभी बेहिसाब भी देता है। और दूसरी इसके अंदर बात यह है कि आप तो 1 मिनट के लिए नेक अमल करते हैं, 2 मिनट के लिए करते हैं, 1 दिन के लिए किया, या 50-60 साल की ज़िंदगी में किया, और जो आपको इसका बदला मिला वो हमेशा हमेशा का, हमेशा हमेशा का अजर, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, तो इससे बेहतर ही हुआ ना। फिर बाज़ लोग इस बात पे इतराज़ करते हैं कि बंदे की सबसे बड़ी नेकी तो ये है कि वो अल्लाह की पहचान कर ले और इसके ऊपर इसको अजर मिलेगा, वो इससे बेहतर होगा। तो अल्लाह की पहचान से बेहतर तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन इसका जवाब ये है कि अल्लाह की पहचान बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसके सिले में जो अल्लाह का दीदार मिलेगा वो उससे भी बड़ी नेमत है। और इंसान ने जो अमल नेक अमल किया ना, वो तो फ़ानी है, और इसके अवज़ जो जन्नत मिलेगी वो हमेशा रहने वाली है। तो जो तुमने किया है ना, उससे बेहतर तुम्हें चीज़ वहाँ पे रिजल्ट में मिलेगी, इनाम उससे भी बड़ा है जो तुमने जितना किया। वहुम मिन फज़ाई यौम इज़िन आमिनून, और वो उस दिन की घबराहट से अमन में होंगे, यानी जब हिसाब किताब हो ओवर हो जाएगा, जब अपनी जन्नत के अंदर चले जाएंगे ना, तो बड़ी अमन के साथ रहेंगे, उनको कोई फिक्र नहीं होगी, फिर बेफिक्र होके रहेंगे, हर नुकसान से बेफिक्री हो जाएगी। तो ये मुसलमानों के लिए बशारत है कि किस से अमन में होंगे वो, उस दिन के हमेशगी के अजाब से। रही ये कि क़यामत के दिन की शिद्दत और उसकी हौलनाकियों का मुशाहिदा, वो भी तो देखे मुसलमान नहीं करेगा, जिसके दिल के अंदर ज़रा सा भी ईमान होगा वो भी क़यामत के दिन की, जो उस दिन जो जैसे मैंने आपको बताया, उससे पहले ये हवा चलेगी कि इंसान को मौत आ जाएगी, मोमिन को, तो वो वाला जो घबराहट का वो वक्त है वो नहीं दिखेगा वो। वह मन जाए अब इस सही, और जो जो कोई लाया बुराई को, जो कोई शिर्क लेके आया, कुफर लेके आया, नाफरमानी लेके आया, फकुब्बत वुजूहुहुम फिन नार, तो उंधे मुंह आग में डाले जाएंगे, उंधे मुंह गिराए जाएंगे आग में। हल तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, नहीं तुम जजा दिए जा रहे मगर जो थे तुम अमल करते। अल्लाह ने कोई जुल्म नहीं किया तुम्हारे ऊपर, ये उसी की जजा है जो तुम अमल करते थे, तुम्हारे अपने अमलों का किया हुआ है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोगे वो ही काटोगे। इन्नमा उमिरतु अन आबुदा रब्ब हादिहिल बल्दतिल लज़ी हर्रमहा। मैं मुझे बेशक ए नबी आप कह दीजिए कि मुझे तो ये हुक्म दिया गया कि मैं उस रब की इबादत करूं जो इस शहर का रब है। किस शहर का? अल्लज़ी हर्रमहा, वो ज़ात जिसने हराम ठहराया उस शहर को। वलहू कुल्लु शैइन, और उसी के लिए हर चीज़। उस शहर का जो हरमे मक्का है, मक्का का जो रब है, उसकी इबादत करो। वो आता भी ना, फलियाबुदु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुअइन व आमनहुम मिन खौफ। सूरह कुरैश में भी आता है ना कि इबादत करो, चाहिए कि इबादत करें उस रब की, जो रब इस घर का है, वो उस रब ने इस घर को अमन वाला घर बनाया, इस जगह को अमन वाली जगह बनाया, तो क्या नहीं तुम्हें चाहिए कि उसी रब की इबादत करो जिसने तुम्हें भूख में आसूदगी दी, तुम्हें खौफ में अमन दिया। तो इस शहर को हुरमत वाला शहर कहा गया। इसकी हुरमत क्या क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का वाले दिन फरमाया था कि ये शहर उसी वक्त से हुरमत वाला है जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया। हुरमत से मुराद क्या है? इज्जत वाला। ये अल्लाह की हुरमत देने से ही हुरमत वाला रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने इसको हुरमत दी है। ये नहीं कि मुसलमानों ने आके इसको ऐसे करा है कि ये बहुत हुरमत वाला है, बड़ी इज्जत वाला, नहीं, अल्लाह ने इसको हुरमत दी है। और कब से दी हुई है? जब से आसमान और ज़मीन को पैदा किया। आप कैन यू इमेजिन कि जब से ये ज़मीन बनी है तो ये जगह उस वक़्त से मोहतरम है, उस वक़्त से इज्जत वाली है, और यहाँ तक कि क़्यामत आ जाए उस वक़्त तक रहेगी। ना इसके कांटे काटे जाएँ, ना इसका शिकार भगाया जाए, खौफजदा किया जाए, ना इसमें गिरी पड़ी चीज़ उठाई जाए, मगर वो उठा ले जो मालिक को पहचानता हो, उसके लिए जायज़ है। तो यहाँ पे इसके अंदर इसलिए भी हर्रामा का लफ्ज़ इसके लिए आता है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी हराम है। इसके कांटे नहीं आप काट सकते, इसका शिकार नहीं आप यहाँ पे कर सकते, यहाँ पे गिरी पड़ी चीज़ किसी की कोई नहीं उठा सकता, समझ आई बात? और हरामा को मोहतरम से उस माने में भी लिया जाए, तो ये इस जगह को अल्लाह ताला ने मोहतरम बनाया, शर्फ दिया ना, इसको इज्जत दी है। व उमिर तो अन अकूना मिनल मुस्लिमीन, और मुझको हुक्म दिया गया कि मैं फर्मा बरदार हो जाऊं, मैं सर झुका दूं, मैं अल्लाह के अहकाम के आगे झुक जाऊं। यानी तुमने मानना है तो मानो, नहीं मानना तो ना मानो, लेकिन मुझे तो अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि मैं उसी की सिर्फ इबादत करूं, उसके साथ किसी को शरीक ना करूं। वो रब जो इस घर का रब है और जिसकी मिल्कियत हर चीज है, उस रब की मैं इबादत करूं, और मुझे ये हुक्म दिया गया कि मैं फर्मा बरदार हो जाऊं। यानी अल्लाह के हुक्मों के बाहर कोई पैगंबर भी नहीं जा सकता, वह पैगंबर को भी अल्लाह का फर्मा बरदार ही बन के रहना। और ये चलें, अब तो टाइम नहीं है तो इसको, बात को शॉर्ट ही किया जाए। अन अतलू अल कुरआन, और ये कि पढ़ सुनाऊँ कुरआन को, और ये भी मुझे हुक्म मिला है कि मैं कुरआन को पढ़ के सुनाऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म था? कुरआन को पढ़ के सुनाएं। ये नहीं कहा गया कि सारों को दे दो, खुद ही पढ़ते रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना, हम खुद ही पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, हम घर में पढ़ते रहते हैं। नहीं, इस कुरान की तबलीग के बारे में क्या कहा गया, इसकी तालीम के बारे में, कि इसको पढ़ के सुनाया जाए। क्योंकि जो सुनाने और सुनने से इंसान के पर असर होता है, वो वैसे पढ़ने से नहीं होगा। तो खुद पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। अगर खुद पढ़ लेना काफ़ी होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ये फरमाते कि बेहतरीन तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इसका मतलब सीखना भी है और सिखाना भी है। तो सीखेंगे किसी से सीखेंगे ना, और सिखाना भी है, तो इसका मतलब इसको पढ़ के सुनाना ज़रूरी है। अच्छा, अब फमन तदा फ़ैनमा यहतदी नफ्सी, तो जो कोई हिदायत पाएगा तो बेशक हिदायत पाएगा अपनी ज़ात के लिए। वमन दल्ला फ़कुल इन्नमा अना मिनल मुनज़िरीन, तो जो कोई भटका तो कह दीजिएगा मैं तो डराने वालों में से हूँ, मेरा काम सिर्फ यह है कि मैं पहुँचा दूँ। आप ये कह दें, और हमें देखें, इस बात का जहन में रखना चाहिए कि अगर अल्लाह हमें रहनुमाई देता है, अगर हमें नेकी का रास्ता दिखाता है, हम अगर अपने अमल की इसलाह कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल देते हैं, किसी पे कोई भी इस चीज़ का एहसान ना जिताएं जी मैंने इनके लिए करा और मैंने उनके लिए किया और देखो मैं तो ऐसी थी और मैं इस, अगर आप सीधे रास्ते पर आ गई तो आपका अपना ही भला इसमें, और जो कोई गुमराह रहना चाहता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की हैसियत से अब हम सबको भी ये चाहिए कि हम भी कुरान को खुद भी पढ़ें, दूसरों को पढ़ के सुनाएं भी, सुनें भी हम दूसरों से। वकुल अल्हम्दुलिल्लाह सयुरीकुम आयाती फतारिफूनहा, तो बस आप कह दीजिए कि तमाम शुक्र अल्लाह ही का है, अन करीब वो तुमको दिखाएगा अपनी निशानियां, तो तुम पहचान लोगे। क्या निशानियां दिखाएगा? अल्लाह ताला ने उनको तो बदर में निशानियां दिखाई, और अल्लाह ताला तुम्हारे अपने जिस्मों में भी तुम्हें निशानियां दिखाएगा, तुम कायनात में भी दिखाएगा। और आज देखें आप, साइंस जितनी डिस्कवरीज और ये करती जा रही है, और ज़्यादा हमें ये पता चलता है कि वाकई देखिए हमारे कुरान के अंदर ये तो बात पहले से लिखी हुई है। तो इससे पता चलता है कुरान सच है, ये बातें सच हैं, तुम पहचान लोगे उससे। और लेकिन जिसको ने कुरान ही ना कभी समझा हो सीखा हो, वो फिर इसीलिए इम्प्रेस हो जाते हैं साइंस से कि हाँ देखो ये बता रही है, हालांकि कुरान उससे पहले से बता रहा है। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और तुम्हारा रब गाफिल नहीं है, बेखबर नहीं है उससे जो तुम अमल कर रहे हो, तो उसको सब बातें पता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो लोगो, अल्लाह को किसी चीज़ से, अपने किसी अमल से गाफिल ना समझना, वो एक एक मच्छर से, एक एक पतंगे से, और एक एक जर्रे से बाखबर है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ से मरवी है कि अगर वो गाफिल होता, यानी अगर अल्लाह ताला गाफिल होता, तो इंसान के कदमों के निशानों से गाफिल होता जिन्हें हवा मिटा देती है, लेकिन वो इन निशानों को भी की भी हिफाजत करने वाला है, और इनको भी जानता है। आपके कदम कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं ना, आपके कदम के निशान तो कोई, अब मट्टी पे तो कदम के निशान पड़ते हैं, आपके कालीनों पे तो वो भी नहीं है, फर्शों पे तो वो भी नहीं है। अगर अल्लाह गाफिल होता तो इनसे होता, जो मिट जाते हैं, जिनका कोई शायद वजूद ही ना हो, लेकिन अल्लाह ताला उनको भी जानता भी है और उनको भी याद रखे हुए। तो फिर इंसान किसी जगह पे भी हो, तन्हाई में हो या सबके सामने हो, अपने आप को कभी अकेला ना समझे, बल्कि हमेशा ये समझे कि अल्लाह ताला जानता है, वो एक सेकंड भी मेरी किसी नकरो हरकत से गाफिल नहीं है, ना कोई भी छुपी हुई चीज़ उसके लिए छुपी हुई है। سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله تعالى أب هم تلاوت سنیں گے انہی آیات کی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم.